गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हमारे बहुत प्रिय मित्र के निवास स्थान पे ये राकेश शेवाणी के घर में हमारे दयाराम प्रिय के परिवार के जिनके साथ हमारा बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था और वो धर्म प्रेमी उस वक्त हमारे संघ में सिंध में प्रेम सागर के माध्यम से इस भगवत गीता के पाकिस्तान के प्रचार में हमारे बहुत सहयोगी रहे और उनके द्वारा किए हुए जितने भी धार्मिक काम हैं आज भी सिंध में सब याद करते हैं। ये उसके परिवार का घर है, उनका पुत्र राकेश और दोनों बेटियां और हमारी भाभी। आज इनके घर में ये जो अभी कीर्तन हुआ ये महायज्ञ हुआ है। ये कलयुग का अश्वमेध यज्ञ से भी शक्तिशाली यज्ञ है। अगर इसकी तुलना राजसूय या अश्वमेध यज्ञ से करी जाए तो इसको पाखंड माना जाता है। पद्म पुराण कहती है फिर ये पाखंड है। एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करे या नाम जपे उसके समान कोई भी दुनिया का यज्ञ नहीं हो सकता है, कोई दान नहीं हो सकता है, कोई तप नहीं हो सकता। सकृद प्रणामो कृष्ण, एक बार भगवान को प्रणाम करे नाम जपे पुनर्जन्म न भवति, कभी दोबारा जन्म नहीं होता। सो ये जो यज्ञ हुआ, अब हम इसलिए एक श्लोक भगवद गीता का उसका अध्ययन करते हैं थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि भगवत गीता भगवान की वाणी है। जैसे हमारे पास गुरुवाणी प्रचलित है, गुरुजी की वाणी को गुरुवाणी कहते हैं और भगवान की वाणी को भगवत गीता कहते हैं। तो गुरुजन भगवान के गुण गाते हैं उसको गुरुवाणी कहते हैं, और भगवान जब अपनी वाणी से भक्तों का हित करने के लिए उपदेश देते हैं उसको भगवत वाणी कहते हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत वाणी, भगवान की वाणी है। भगवान के अपने श्री मुख से विश्व के कल्याण के लिए ये अद्भुत शास्त्र जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसके महात्म में कहा है कि क्या करोगे अन्य शास्त्र पढ़ के, जो दुनिया के शास्त्रों में है वो तो सब इसमें है, और जो और कहीं नहीं है वो भी इसमें है। और कहीं क्या नहीं है? और कहीं भगवान की जानकारी नहीं है किसी शास्त्र में कि भगवान कौन है। और जगह भगवान के लिए बहुत अलग नाम लिखे हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये है, वो कौन है वो, इसका परिचय किसी शास्त्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। सभी कहते हैं हम भगवान की पूजा करें, भगवान कौन है ये तो पता नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भगवद गीता का जो विलक्षणता विशेषता है उसमें सीधा भगवान सामने खड़े होके कहता है आपको देखना है कि भगवान कौन है तो ये देख लो मैं हूं भगवान। ऐसा और कहीं किसी शास्त्र में कोई कह नहीं पता। और फिर अर्जुन बड़ा सावधान था, उसने कहा कोई ऐसे न कह दे कल के अपने दोस्त को भगवान मान लिया। बोला आपका विश्व रूप तो दिखाओ, ये पूरी दुनिया आप में कैसे समाई हुई है, आपने ही तो दुनिया बनाई है ना, तो आप में कैसे समाई हुए दिखाओ तो सही। तो ये एक कसौटी भगवान ने रख दी कि आगे कोई भविष्य में भगवान कहने की मूर्खता करे तो उससे पूछ लेना कि तुम्हारा विश्व रूप कहां है, ये पूरा ब्रह्मांड तुम में कहां समाया हुआ है, तेरे चांद कहां है, सूर्य कहां है, ये आकाश कहां है, ये पृथ्वी कहां है तुम्हारे अंदर समाई हुई। तो बहुत बड़ा सावधान, इसलिए कसौटी के ऊपर ऐसा परख के इस भगवद गीता में पूरे विश्व के विद्वान, केवल भारत के नहीं, केवल हिंदू जाति के नहीं, लेकिन पूरे विश्व के विद्वान इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे। असल में इस दुनिया में जितने लोग हैं उनमें आधे तो भगवान को मानते ही नहीं है, वो तो नास्तिक है। जो आधे मानते हैं वो जानते नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या। आप 100 आदमी से जाके पूछोगे भगवान कौन है, हर एक अपने अपना नाम देगा, कोई तो कहेगा सब भगवान है। वो एक बार प्रभुपाद जी कहते मूर्ख है, किसी स्त्री से पूछोगे तुम्हारा पति कौन है, कहेगा सभी पति है, ये कोई बुद्धिमानी का उत्तर है क्या? ये तो बेवकूफ वाला उत्तर है कि नहीं? तो कौन है भगवान, ये बहुत बड़ा एक ऐसा, लोग कहते हैं हम भगवान की पूजा करने जाते, लेकिन है कौन भगवान ये पता कहां से लगे। अभी कोई आदमी बच्चे किसी से पूछो कि तुम्हारा पिता क्या है, कौन है, कौन बता सकता है, कहां से प्रमाण ये मिलेगा कि पिता कौन है? इस दुनिया में कोई बच्चा कहीं मिल जाए उसके पिता का प्रमाण पूछना है, प्रूफ बताओ कि तुम्हारा पिता है कौन है, तो क्या क्या प्रूफ है? मां, मां कहेगी कि ये तुम्हारा पिता है, ये दुनिया का नेम है, माता ही प्रमाण है कि नहीं है? ऐसे भगवान के लिए शास्त्र माता प्रमाण है, इसलिए गीता को माता कहा गया। भगवत गीते अष्टादश अध्यायनी अम्ब, अम्ब माना माता, अम्ब कहते हैं माता को, ये माता है, ये मां है। हरे कृष्णा, आइए आइए, स्वागत है, यहाँ यहाँ ये आगे, आप आगे आइए, आप प्रभु जी आइए, और ये हमारे तो आगे पहले, ये हमारे पड़ोसी, आपने फोन किया, वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। ये गोयल साहब है, नहीं कौन, कल वहां आए थे वो, ठीक ठीक ठीक, आपने ऊपर नहीं फोन किया था, नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि विश्व में, हाँ हाँ, मन सुखाने की जय, अरे बोल, मन को सुख देने वाले मन सुखाने। सो बात ये कर रहे हैं कि संसार के अंदर शास्त्र, जैसे बाप का पता लगाना है तो मां उसका प्रमाण है, ऐसे भगवान का पता लगाना है तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र बताएगा उस बात को मानना पड़ेगा, बगैर शास्त्र के तो कोई संत कोई साधु कोई कुछ कह नहीं सकता। प्रमाण तो चाहिए कोर्ट के अंदर, आपको कोई कानून तो बताना पड़ेगा ना, ये आपका कानून ये है इसलिए तुम्हारे को छोड़ते हैं। तो शास्त्र प्रमाण, वैसे शास्त्र शब्द शासन शस्त्र शिष्य ये सब एक ही जगह से निकलते हैं। भाई शासन का मतलब क्या है? शासन किसको कहते हैं? हमारे देश का शासन है, शासन का मतलब गवर्नमेंट काय के लिए होती है? सबको नेम में चलाने के लिए। शस्त्र हाथ में क्यों रखता है सिपाही? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून के दायरे के अंदर सबको रखने के लिए। ऐसे शास्त्र क्या करता है? हमको मर्यादा में रखने के लिए। शस्त्र शासन शास्त्र शिष्य, इसलिए शिष्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिसाइपल, मतलब जिसको डिसिप्लिन किया जाए। तो ये शास्त्र मर्यादा में रखने के लिए। और शास्त्र का आजकल अध्ययन करना पठन पाठन करना दुर्लभ होता जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं उधर उदाहरण दिया था, आप लोग कुछ भक्त थे। हमारी मानसिकता हमारी सोच ऐसी हो गई है जैसे स्कूल के अंदर एक क्लास का किताब पूरा हुआ तो उस किताब को कभी वापस देखते ही नहीं है, तो वो तो जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गया। अरे उसी के आधार के ऊपर तो तुम आगे बढ़े हो, उसको तो फिर हाथ कभी नहीं लगाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। ये आप सबके पास मशीनें पड़ी हैं, मोबाइल पड़ा है, फ्रिज पड़ा है, ये जब खरीद करके आते हो तो बड़ा अच्छा एक कलरफुल किताब मिलता है कि नहीं मिलता? बोला वो बेकार में गवर्नमेंट छापती है क्या? उन्हें जो कंपनी बेकार में छापती है क्या? नहीं ना, उसमें लिखा होता है इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। कितने लोग उस किताब को पढ़ते हैं मैं आपसे पूछता हूं? सबके पास मोबाइल है, सबके पास ये गैजेट पड़े हैं मॉडर्न, सबको किताब मिला है, किसी ने खोल के पढ़ा है क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? उसको पढ़ने के लिए उसने छाप के अंदर रखा है, सही चलाने के लिए क्यों नहीं पढ़ा? टेक इट गारंटेड है, क्या है, कोई बात नहीं चलेगा। ये हमारी बहुत जन्मों से मानसिकता हो गई है कि अब छन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ये स्टूडेंट जैसे बेटा पढ़ रहे हो ना बेटा, कौन सा हफ्ते का दिन आपको अच्छा लगता है? व्हिच डे ऑफ वीक यू लाइक? आई वेरी गुड, मुझे मालूम है सभी संडे गए। क्यों? क्योंकि कोई नेमने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ पढ़ने वाला नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, सो के मौज करो। नो बडी वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन, जिससे हमको सबको फ्रीडम चाहिए। वो फ्रीडम ऐसी चाहिए जिसमें परेशानी है। एक संडे बच्चे घर होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं कि नहीं है? आप देखो कि छह दिन मास्टर कैसे उसके साथ भुगतता होगा। सो बात क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो डिसिप्लिन एक शास्त्र हमारे को मर्यादा में रखने के लिए। अच्छा, आपके घर में आप जो देवियां बैठी हैं, बच्चा कभी शरारत करता है या थोड़ा नहीं मानता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? तुम्हारे डेडी को आने दो, यही कहते हो और कुछ कहते हो? ये एक मर्यादा है, घर का बड़ा को आएगा तब आप ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहते हैं कि नहीं कहते? ये नॉर्मल यही कोर्स है कि नहीं है? तो ऐसे ही शास्त्र कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, भगवान को आने दो, वो आ रहा है, तुम्हारे को उसकी बात समझनी चाहिए। भाई बड़ा होगा उसकी बात मानेगा ना, ये मर्यादा बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? तो शास्त्र हमको भगवान की पहचान कराता है, नहीं तो भगवान कौन है ये मानना। इसलिए कह दिया लोगों ने भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। अरे कैसे रूप रंग नहीं? तुम्हारा कहां से आ गया? तुम्हारे दादा का कहां से आया? तुम्हारा भी तो पिता होगा, दादा होगा कि नहीं होगा? दादा का दादा होगा तो उसका ब्रह्मा जी दादा है कि नहीं है? तो ब्रह्मा जी को तो रूप पड़ा है, उसके तो चार मुख आपने बना के रखे हैं, तो ब्रह्मा जी जिससे पैदा हुआ उसका कोई रूप नहीं है क्या? तो कैसे मान लिया कि उसका रूप नहीं है? क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आता इसलिए बोला जान छोड़ा लो। तो फिर मैं वही प्रश्न पूछता हूं कि किताब हमको मिलता है उसको पढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम सीरियस नहीं है लेकिन किताब को संभाल के रखते हैं। देखा है ना, वो जो किताब आता है उसको अलमारी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसमें गारंटी लिखी है, खराब हो गया तो ठीक करा लेंगे, है ना? ऐसे ही हमने गीता भागवत घर में लाल कपड़े में रखी है, गारंटी है कहीं कोई मर गया तो पढ़ के हाथ लगा देंगे, ये गारंटी है। बस इतना ही काम करके हमने रखा है शास्त्र को कि हाथ लगा देंगे बस, और उसको पढ़ेंगे कब? उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कभी अपने बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? मैं कौन हूं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारी अपनी पहचान क्या है ये हमको तो मालूम नहीं है। इसलिए भगवत गीता के अंदर एक विषय है कि मैं कौन हूं, और दूसरा विषय है कि मैं किसका हूं। किसी को कोई मिल जाएगा उसको पूछे भाई किसके हो, ये किसके हो ये तो उत्तर आना चाहिए, मैं किसका हूं भाई, कहां से आया और फिर तुम यहां क्या कर रहे हो, कब से हो, सदा यहां रहोगे क्या? नहीं नहीं रह सकता, कहां जाओगे? तो पहला प्रश्न क्या है, आप कौन हो, इसका उत्तर भगवत गीता क्या देती है, आप सच्चिदानंद आत्मा हो, अमर हो, शरीर नहीं हो। ये शरीर आपको ऐसे मिला है जैसे आपने गाड़ी खरीदी है। गाड़ी क्यों खरीदी है? किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, लेकिन गाड़ी के अंदर सारी उम्र रह नहीं सकते हो। ऐसे ये शरीर हमारे को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने काम निकालने के लिए मिला है, और हम क्या है, इस शरीर से अलग हैं, लेकिन हमने इसको शरीर ही समझ के रखा है, और इससे ज्यादा किसी ने आज तक प्रयास करके पूछा भी नहीं है कि मैं हूं कौन। अपने को भी नहीं पहचानते हम। एक बहुत बड़े मंत्री थे बंगाल के, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ के आए और महाप्रभु चैतन्य से पूछे कि लोग कहते हैं मैं मंत्री हूं, लोग कहते हैं मैं विद्वान हूं, लेकिन मुझे ही पता नहीं है मैं कौन हूं, मुझे मेरा परिचय तो बताइए कि मैं कौन हूं, अमी कहे मैं कौन हूं। और भगवान के मुख से निकला, तुम हो जीव आत्मा, और नित्य भगवान के साथ संबंध में जुड़े हुए हो, वो आपका स्वामी है, आप उसके सेवक हो। अब बताओ, जिसका स्वामी तुम भगवान, जिसका स्वामी हो, उस सेवक को कोई दुनिया में दुख है क्या? जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ये जो संतों की वाणी है कि तुम्हारा स्वामी, अपने स्वामी को पहचाना तो फिर दुख काएगा। तो हम भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, और हम नित्य हैं, शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं। शरीर बदल जाता है, हम नहीं बदल। आपने कितने कपड़े जीवन भर में बदले, राकेश घना कपड़ा जोड़ा तो बदला नहीं, इस टाइम गिनती नहीं कर सकते हैं। बच्चों ने कितना बचपन में बताया बिता, हमने चेंज किए, अभी कितने चेंज कर दिए हैं। ये तो भगवत गीता का बहुत श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो। पुराने कपड़े बदल के नए पहन लेते हैं, ऐसे कितने हमने बदले आज तक हमको मालूम भी नहीं है। ऐसे कितने शरीर हमने बदले हमें मालूम ही नहीं है, हम तो वही के वही बैठे हुए हैं। कपड़े कोई पहनो, आप तो वही रहोगे कि नहीं, बदल जाओगे कपड़े के साथ? कपड़े के साथ आदमी तो नहीं बदलता है ना, लेकिन इस दुनिया में आदमी ने कपड़े का कदर कर दिया, आदमी को भुला दिया। एक फकीर सिंध में हुआ है, बतायो फकीर कहते थे, एक संत था, वो बेचारा साधु था ना, ऐसे लाल कपड़े में थोड़ा हल्का सा, किसी बहुत बड़ी दावत में ऐसे चला गया, तो लोगों ने निकलो कौन है, कहां से आ गया? वो बाहर गया, उसने कहा इनको सिखाना पड़ेगा। वो जा गया कहीं से, अच्छे सफेद कपड़े अच्छे पहन के, कोट वोट पहन के ऐसे आ गया, सबने कहा आइए आइए कुछ खाइए। तो वो उठा के जलेबी, बोलता है कोट जलेबी खा, हे टाई तुम रसगुल्ला खा। बोला ये क्या कर रहे हैं महाराज? बोला मैं तो पहले ही आया था, मेरे को तो कोई नहीं खिला रहा था, ये कपड़ों को सबने मान दिया, खाए कपड़ा, मैं थोड़ी खाऊंगा। ये तो कपड़े का मान है, मेरा मान तो नहीं, मेरे को तो पहचाना नहीं आपने। एक संत था, उसकी कोई निंदा करता था, किसी ने जाके कहा महाराज वो आपकी निंदा कर रहा है। बोला वो मेरे को जानता नहीं है, निंदा कैसे करेगा? बोला महाराज आपका नाम लेता है, आपके आश्रम का नाम लेता है, और बहुत 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 बड़ी बड़ी गालियां देता है। बोला बेटा वो मुझे नहीं जानता है, क्या उसको मालूम है कि मैं आत्मा हूं? वो गालियां शरीर को देता है ना, मैं ही कहता हूं ये कौन सा अच्छा है, ये मेरे को ही परेशान कर रहा है। बोलने दो, आत्मा हूं वो मेरे को जानता है क्या? और फिर पूछा महात्मा ने, क्या वो खुश होता है जब मेरे को गालियां देता है? बोला महाराज बहुत खुश होता है, हमारे को भी दूध पिला देता है, सुनते हैं इसलिए। बोला बेटा देखो, मुफ्त में किसी को खुश करने का हम कारण तो बने, भले हमें खुश तो हो रहा है ना, और हमारा क्या बिगड़ रहा है? इसलिए इस दुनिया में बहुत कॉस्टली मोबाइल है मेरे पास, सोने का हार है, क्या ये मुझको जानता है क्या? मैं इसको कहता हूं मेरा है, ये मुझे जानता है क्या? हाँ, हमने इस दुनिया की चीजों को अपना मान रखा है, वो कि हमको जानती है कि हमारी है। अगर ये गिर जाए, पीछे से बुलाया आज तक किसी ने कि भैया मेरे को उठा ले, कोई गिर गया मैं तुम्हारा, बुलाया किसी ने? हाँ, ये घर जिसमें रहते हैं हम कहते हैं हमारा है। इसमें काकरोच भी जब पड़ोसी के घर में घूमने जाता है ना, दूसरे काकरोच कहता है ये बंगला हमारा है। और वो भी ऐसे ही कहता है कि ये भी हम भी यहां रहते हैं, ये देखो बड़ा बड़ा हमारा महल है। और ये तो इतना ही कॉन्शियस है हमारा है, हम ये मान लेते हैं, बस हो गया। तो कोई घर से मतलब है क्या? घर का मालिक है इसलिए आए हैं ना भाई, घर का, घर से कोई मतलब थोड़ी हमारा। लेकिन हमने परेशानी क्या कर दी है, घर की कीमत ज्यादा है आदमी की कीमत कम है, ये कर दिया कि नहीं कर दिया? आजों की दुनिया में धरती की कीमत ज्यादा है और किसान की कीमत कम है, किसान की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जमीन की कीमत ज्यादा होनी, किसकी कीमत ज्यादा चाहिए, किसान की या धरती की? किसान की होनी चाहिए। ऐसे हमारी मानसिकता इतनी उल्टी हो गई है कि हमने शरीर को महत्व दिया और आत्मा को भुला दिया, और जिस आत्मा के आधार पे ये शरीर टिका हुआ है उसको है, उस आत्मा का तो हमको पता तक नहीं है, और शरीर को ही सब कुछ समझ के रखा है, और एक दिन जाता है तब रोते हैं, वो चला गया, कौन चला गया? शरीर तो हमारे आंखों के सामने पड़ा होता है, उसको तो हम ही उठा के जाते हैं, तो गया कौन जिसके लिए पीछे रो रहे हो? वो पता उस दिन लगता है एक दिन के, इसमें न तो कोई और था जिससे हमारा रिश्ता था। ये बहुत बड़ा विज्ञान है भगवत गीता का, जो हमारे को अमरपन का एहसास दिलाता है कि हम अमर हैं, कभी नाश नहीं होने वाले हैं। और जिसको अमरपन का एहसास हो जाए वो काय के लिए दुनिया में डरेगा? क्यों डरेगा, किससे डरेगा? और फिर भगवान हमारे स्वामी हैं तो फिर कहीं किससे डरने की जरूरत है? तो हमारी जितनी इच्छाएं इस संसार में हैं, भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसके साथ क्या बनाया, ये हमने आज के श्लोक कहा था, हम भगवत गीता का श्लोक आपके साथ शेयर करेंगे, उस श्लोक को पढ़ रहे हैं। आप इस श्लोक का देखो आपके जीवन में कैसे ये काम आता है। कहां कौन सा श्लोक आ गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। अब सृष्टि किसने की? भगवान ने की कि हमने की? भगवान ने की। अब भगवान ने जब सृष्टि की तो वो लिखते हैं, सह यज्ञ सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति। प्रजा, प्रजा कहते हैं पुत्र को, वैसे प्रजा कहते हैं सारे सिटीजन को। राजा के लिए प्रजा ऐसा है जैसे बाप के लिए पुत्र। प्रजा का अर्थ और पुत्र भी है और प्रजा का अर्थ पब्लिक भी है। तो किसने पैदा किया सबको? बोला प्रो, भगवान ने। असली प्रजापति तो वो है ना, उसने ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा ने पूरे संसार को पैदा किया। कहां से सब निकले हैं भाई? हम सब भी तो किसी मां के पेट से निकले हैं ना। ऐसे भगवान विष्णु के पेट से ये पूरा ब्रह्मांड निकला है। एक ब्रह्मांड नहीं, पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक ये 14 भुवन पूरे के पूरे भगवान के पेट से निकले हैं। वो हमारा जन्मदाता है, इसलिए वो कहता है मैं आपकी माता हूं। पहले कहता है माता अमर से जगतो, भगवान कहता है मैं माता हूं, मैं पिता हूं, पालन भी मैं करता हूं, जन्म भी मैं देता हूं। और जब पैदा किया बोला अकेला आपको नहीं पैदा किया, आपके भले के लिए सह यज्ञ आपके साथ यज्ञ को पैदा किया। वैसे यज्ञ शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु। इसका मतलब भगवान हमारे पहले तो हृदय में तो स्वयं परमात्मा के रूप में बैठे हैं। उस भगवान विष्णु का नाम है खीर सागर में सहन करने वाला विष्णु, जिसको परमात्मा कहते हैं। वो हम सवारे हमारे सबके दिल में बैठा है, कोई दिल खाली नहीं है जिसमें भगवान नहीं हो। इसलिए ये भक्त लोग जो तिलक लगाते हैं इसका अर्थ है ये शरीर भगवान का मंदिर है, इस शरीर में भगवान बनता है, बैठा हुआ है। ये मंदिर किसने बनाया इतना बड़ा? ये देखिए ये बच्चे जो बैठे हैं ये सब कोई, ये IIT कानपुर का हमारा बहुत पुराना मित्र, 20 साल पहले हमारे साथ वृंदावन में रहते थे, ये IIT का इंजीनियर है। ये सब बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत ही समझो कि वैसे तो इन्होंने अच्छा काम किया, नहीं तो आज की मैं पढ़ाई का आपको कथा बता दूं, जो बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं ना, यही करते हैं ना, और जो सेकंड क्लास में आते हैं वो MBA करते हैं, वो फर्स्ट क्लास को मैनेज करते हैं, जाके मैनेजर बनते हैं, राइट? सही है ना? और जो थर्ड क्लास में होते हैं वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं आर्ट में, वो इन दोनों को मैनेज करते हैं। सही है कि नहीं? इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। और जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं, माफिया बनते हैं और इन चारों को मैनेज करते हैं। और जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं वो आजकल के बाबा जी साधु बनते हैं, इन पांचों को चलाते हैं। आप देख लो कि इन्होंने ये अच्छा फैसला नहीं किया होता तो फोर्थ क्लास का आदमी इनको रूल करता होता। अब ये भगवान की सेवा में लगे हुए, इतना बड़ा आपके पुणे में निर्माण किया है, उसके अंदर ये एक एक ईंट अंदर ये उनके नीम में पड़े हुए हैं बच्चे। इन्होंने जो ये निर्माण किया है, आने वाले 100 साल तक कितने लोगों का उद्धार होगा। अभी किसी फैक्ट्री में काम किया होता उसे कहीं मर के खप के चले गए, क्या फर्क पड़ा। तो इन्होंने जो काम किया है ये बहुत बड़ा अद्भुत काम है। वैसे आपके आज एजुकेशन का देखा कितना बुरा हाल है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट क्लास वाले को फोर्थ क्लास का मैनेज कर रहा, किसको किसको मैनेज करना चाहिए था? फर्स्ट क्लास का होना चाहिए सम्मान का, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसका नहीं। बहुत बड़ी समस्या है ये परवर्टेड एजुकेशन का सिस्टम हमारे पास। नहीं तो पहले टीचर को सबसे ज्यादा सम्मान था हमारे, जब हम पढ़ते थे तो टीचर गुरुजी सबसे बड़ा सम्मान एक शहर में गांव में हुआ करता था। अब उसको बदनाम करने के लिए बस चलाने वाले को उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद। इतना उसको बदनाम करके भी उस्ताद का टीचर का नाम इतना नीच कर दिया। और जो को कहीं नौकरी नहीं मिलता है वो टीचर में जाता है, पहले फर्स्ट क्लास में आता था वो टीचर होता था। तो ये एजुकेशन के अंदर इतनी बड़ी परवर्शन है, इतना बड़ा कि अब अच्छा क्या करेगा ये पढ़ के, अब के कल का जो है वो अनपढ़ लोग जो है इनके ऊपर राज कर रहे। भाई पॉलिटिशियन सारे ही फेल है, नाबजा के पहले तो स्कूल गए नहीं है। अब वो चला रहे हैं राज। सो भगवान ने यज्ञ को पैदा किया, उसके साथ देवताओं को पैदा किया और मानव को पैदा किया। ये भगवान ने क्या कहा फिर? सह यज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, सारे पुत्रों की उत्पत्ति की, मानव की उत्पत्ति की भगवान ने, जिसको अपनी प्रजा माना। प्रोवाच प्रजापति, और फिर प्रवचन किया भगवान ने, सबको पैदा करके प्रवचन किया। क्या कहा? अनेन प्रस्यविश्वध्वम, आप एक दूसरे की सहायता करो, आप एक दूसरे से सहयोग करो, कोऑपरेशन करो। अभी कोई किसी से कोऑपरेशन नहीं कर रहा, बहुत बड़ी समस्या है। कोऑपरेशन नहीं, अब कंपटीशन है पूरी दुनिया में। भगवान ने कहा एक दूसरे से सहयोग करो, और फिर कहा एष, ये जो यज्ञ है वो अस्त्व, ये यज्ञ जो है ये आपका क्या करेगा? इष्ट काम दुख। इष्ट का मतलब आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हो, और इष्ट का मतलब आपका प्रिय है ये, और ये आपकी सारी कामनाओं को पूरा करेगा। ये कल्प वृक्ष है, यज्ञ क्या है? कल्प वृक्ष है। ये आपका इष्ट काम दुख आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। अब हमारे दिमाग में यज्ञ कौन सा बैठा हुआ है कि कहीं पंडित जी को बुलाएंगे और लकड़ी लाएगा, जलाएगा, आग निकलेगी, फिर उसमें स्वाहा करेगा, इसको यज्ञ कहते हैं। और अब लोग कहें कि भगवान ने ऐसा कानून बता दिया कि यज्ञ करो और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और ये यज्ञ आज हम कैसे अपने घर में करें? अब तो फ्लैटें चारों ओर से बंद है, धुआं करेंगे तो काला हो जाएगा। और काला क्या होगा जब हमारे नए नए भक्त अमेरिका में बेचारे, उनको प्रभुपाद ने सिखाया कि भाई, उनको मालूम नहीं था पहले, क्योंकि वेस्ट के वर्ल्ड में पकाना खाना कुछ नहीं आता है, ब्रेड और बटर बस, बाकी सब गटर और कुछ मालूम नहीं है। वो इधर करो उधर करो उसी को घुमाते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको भाई दाल को चांच लगाना सिखाया कि घी को पहले गर्म करो, फिर अंदर जीरा ये डालो। वो घर के अंदर जो चांच डाला तो धुआं निकला, तो अलार्म बजा जैसे फायर का, पूरे शहर के लोग, वो फायर ब्रिगेड आ गए कि क्या हो गया। अरे भाई कुछ नहीं है, रसोई के अंदर भोजन कर रहे। तो अगर ऐसे यज्ञ करें धुआं निकले तो रोज फायर ब्रिगेड खड़ी हो घर बिल्डिंग के बाहर। तो क्या भगवान ऐसा नियम बताएंगे जो सब लोग नहीं कर सके? भगवान का नियम भगवद गीता में इसी अध्याय में लिखा है, ये मे मतम नित्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाहा। मेरा मत जो है, मेरा नियम है नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, चेंज नहीं आएगी मेरे में। ऐसा नहीं है पहले ओल्ड टेस्टमेंट थे और अभी न्यू आ गए, नहीं, मेरा मत नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मानव जाति के लिए है। ये किसी एक देश के लिए नहीं है, एक काल के लिए है, एक न देश के लिए है, न काल के लिए, न व्यक्ति विशेष के लिए, ये मानव मात्र के लिए है, ये सर्वजनिक है, मतलब सब जो सब सब मानवों के लिए है, सार्वभौमिक है मतलब पूरी पृथ्वी के लिए है, सब देशों के लिए, और सर्वकालीन है मतलब हर समय के लिए। तो भगवान का नेम जो होता है वो नित्य होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कभी कोई चेंज नहीं आती है भगवान के नेम में, चेंज नहीं आती। साइंस में चेंज आती है, साइंस आज कहेगी पहले जो कहा था वो रद्द होगी, थ्योरी अब नई थ्योरी आ गई, लेकिन भगवान की थ्योरी में कोई चेंज नहीं आता। तो भगवान ने ये यज्ञ का कह दिया, क्या इसको नहीं कर सकते क्या? सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ये यज्ञ ऐसा है जो आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा, ये कामधेनु है, इष्ट काम दुख। तो बहुत से यज्ञ भगवान ने बताए थे, स्वाध्याय यज्ञ शास्त्र पढ़ने का बताया, होता नहीं है। बोला प्राणायाम करो, होता नहीं है। ज्ञान यज्ञ करो, नहीं होता है। तो फिर दसवें अध्याय में जाते हुए भगवान ने एक ऐसा यज्ञ बता दिया जिसमें न तेल चाहिए, न घी चाहिए, न आग चाहिए, न पंडित चाहिए, न पूजा करने वाला चाहिए, न खर्चा। उस यज्ञ का नाम भगवान ने सब यज्ञों की विभूति, अपनी विभूति बता दिया कि मेरी पहचान इस यज्ञ के द्वारा होगी। और कौन सा यज्ञ बताया? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। जैसे जो चीज कभी हिलाई नहीं जा सकती वो हिमालय, ऐसे जो यज्ञ अगर आप करोगे जिसका नाम है जप नाम का यज्ञ, जप नाम का यज्ञ, ये हमारे सिंधी परिवार यहां आए हुए हैं, गुरबाणी में पहला श्लोक जो है उसमें जप शब्द के दोनों तरफ लकीरें लगी हुई है। जप जप साहब ने जो पहली पौड़ी है, पहली पौड़ी में सिद्धू ने गुरु नानक साहब से पूछा था, भगवान कौन है, क्या करता है, कैसे मिलेगा? तो नानक साहब के मुख से निकला गुरुदाप के, एको ओंकार, भगवान एक है, ओंकार उसका सिंबल है, ओंकार के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल है एको ओंकार। सत्य नाम, उसका नाम सत्य है, बाकी सबके नाम दुनिया में असत्य हैं, बदल जाते हैं, कोई रहता नहीं है। कितने यहाँ के राजा महाराजा हुए किसी को याद है क्या? कितने हो, नाम किसी खत्म हो गए, लेकिन भगवान का नाम सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। एको ओंकार वो एक है, ओम उसका सिंबल है, उसका नाम सत्य है, सत्य नाम। कर्ता पुरुष, कर्ता का मतलब सब कुछ करता है, और पुरुष का संस्कृत शब्द है पुरुष, वो पंजाबी में पुरुष हो गया, वो एक पुरुष है जो सब कुछ करता है। करता है का मतलब सृष्टि करता, पालन करता, सब कुछ वही है, करता वो है। ये बहुत बड़ा, इसको ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सबका कर्ता भगवान है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, फिर क्या बोला? निर्भव, निर्भव, जिसका किसी का भव नहीं है, भगवान को कहते हैं अभय, किसी का भय नहीं है, और जो उसके पास जाएगा उसका भी भय नाश हो जाएगा। भगवान के चरण कमलों को ही कहते हैं अभय चरणार विंदरे, जिसके चरण भय से मुक्त करने वाले। तो भगवान को किसी का भय नहीं है, क्यों भय नहीं है? क्योंकि वो मरता ही नहीं है, मरने का भय सबको होता है, वो तो उसका मरना है नहीं, वो तो अमर है। और हमको डर क्यों होता है? हम शरीर को अपने आप को मान के बैठे हैं, इसलिए डर रहे। इसलिए कहते हैं साधु बड़े काम को जगत में आते हैं, मरण मिटा के खौफ मरने का अमर जीवन बनाते हैं। साधुओं की शिक्षा है कि मरने से ऊपर उठ के अमर बन जाओ। और भगवत गीता का उपदेश भगवान ने कब दिया? जब मौत का खेल खेला जा रहा था, मारा मारी के बीच में अमर बनाने का उपदेश दिया है, जहां मृत्यु के खेल के बीच में अमरता का उपदेश दिया है। तो अमर बनाना, तो एक भगवान निर्वय, फिर एक शब्द आ गया क्या? अकाल मूरत। अब मूरत शब्द को सुनो, मूरत किसको बोलते हैं? जिसको रूप हो उसको मूरत बोलते हैं ना, मूरत से मूर्ति, मूरत अकाल मूरत, जिसकी मूरत के ऊपर काल का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी मूरत के ऊपर काल का ये प्रभाव पड़ा, हम बच्चे थे फिर हम जवान हुए, अब बूढ़े हो रहे, तो हमारे तो मूर्त, हमारी मूरत को काल परिवर्तन करता है, काल के गाल में जा रही है कि नहीं रोज रोज। हमारा तो शरीर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन भगवान अकाल मूर्त है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे रहे हैं तब 100 वर्ष से बड़े थे, लेकिन उनको कितने दिख रहे थे? 16 साल से बड़े नहीं दिख रहे, कभी भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी सूरत काल के प्रभाव से परे है। भगवान काल के स्वामी हैं। काल भगवान के, ये 11वें अध्याय में अर्जुन पूछता है आप हो कौन भगवान, ये सब कुछ विनाश हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान कालो अस्मि, मैं काल हूं। भगवान काल है तो भगवान का काल क्या बिगाड़ेगा? तो अकाल मूरत भगवान का जो रूप है काल से रहित है, उसके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अजूनी सैभम, अजूनी, जूनी कहते हैं गर्भ में आने को। भगवान कर्मों के कारण कभी भी इस संसार में जन्म नहीं लेता, भगवान प्रकट होता। जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी है, अब नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा तो किसी जूनी की जरूरत नहीं है, वो तो खंभे के अंदर से प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए, तो उसका जूनी नहीं है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। वो ब्रह्मा जी ऐसे चिंतन कर रहे थे तो वाराहदेव उनके नाक से प्रकट हो गए, तो भगवान कहीं से भी आ सकते हैं। वो सब जगह है कि नहीं है? अगर सब जगह है तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो किसी की जूनी उसको कहते हैं, वैसे जूनी का अर्थ है बच्चेदानी, जो गर्भ में आए उसको जूनी बोलते हैं। तो भगवान कभी भी कर्मों के कारण गर्भ में नहीं आते, अजूनी सैभम। अब क्या कह दिया, किसी से वैर नहीं है, फिर निर्वैर। देखो भगवान जब सुबह सूरज को उगाते हैं तो रोशनी सबको देते हैं, चोर को भी देते हैं, साध को भी देते हैं, बरसात बरसाते हैं तो पहाड़ के ऊपर भी तो धरती के ऊपर भी, पापी के ऊपर भी पानी मिलता है तो साधु को भी मिलता है। भगवान निर्वैर है, किसी से वैर नहीं है। फिर कहा कि वो मिलेगा कैसे? ये तो हुए भगवान की गुण, कैसे कैसा है रूप, कैसा है, काल का प्रभाव नहीं है, नाम सत्य है, मिलेगा कैसे? बोला गुरु प्रसाद, जब गुरु कृपा करेगा तब मिलेगा। भगवान मिलेगा गुरु की कृपा से। बोला फिर क्या करना? बोला फिर जप, जो गुरु कृपा करेगा फिर बैठ के जप। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया, तो वो यज्ञ नाम का जप मैं हूं, जब वो गुरु आपको दे उसको आप बैठ के जप करो तो वो यज्ञ सब कर सकते, वो बच्चा भी कर सकता है, माता भी कर सकता है, बेटी बहन भाई सब कर सकते। ये इतना सरल जप है, ये बच्चे जो ये सब कुछ अपने दुनिया का वैभव छोड़ के भगवान की सेवा में लगे हैं, वो मुख्य इनके हाँ काम क्या है, जप। इस जप ने इनका जीवन धन्य कर दिया। तो जप ऐसा है, चाहो तो भगवान मिलता है, चाहो तो दुनिया भी मिलती है, जो कुछ चाहो से मिलता है। भाई दुनिया किसकी है? भगवान की। और किसी को देना चाहे तो दे भी सकता है, और जब जप के साथ दुनिया देगा तो वो आदमी गप में कभी फंसेगा नहीं। गप में फंसेगा मतलब वो दुनिया में फंसेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने दी है तो वो भगवान की सेवा में लगाएगा। तो जप नाम का यज्ञ मैं हूं, और जो मंत्र जिसका जप सब कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ये कलि संत ने उपनिषद में ब्रह्मा जी के पास नारद चला गया, बोला कलयुग बड़ा घोर आया है, चारों ओर पापों का बोल बाला है, इस स्थिति में पिता इन संसार का कल्याण कैसे हो? तो बड़े खुश हो के ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा जो दुनिया के भले का सोचता है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, जो इसके हृदय में दया होगी वो दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहेगा। तुम संसार के दुख के लिए मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने वेदों को 3 बार अच्छी तरह से पढ़ा है, मैंने सारे शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और मैंने ये सार मुझे ये मिला है। तब ब्रह्मा जी ने ये 16 अक्षर उच्चारण किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम। ये 16 अक्षर कलयुग के सारे पाप ताप संताप नाश करने वाले हैं। न परत्रम, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये ब्रह्मा जी कह रहा है, जो सृष्टि का, जो दुनिया के अंदर जितने भी साधु संत महात्मा आए उन सबको पैदा करने वाला ब्रह्मा जी, वो कह रहा है कि ये सब शास्त्रों का सार है और मैं आपको। और तब नारद जी कहता है, इतना बड़ा मंत्र है, सब शास्त्रों का सार है, इसके जपने का कोई नियम होगा, टेम होगा, मर्यादा होगी, कौन जप सकता है कौन नहीं जप सकता है। यज्ञ ऐसे होते हैं, वाजपेय यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, वैश्वानर यज्ञ वैश्य कर सकता है, लेकिन सब यज्ञ ऐसा कौन सा यज्ञ जो सब कर सके। यज्ञों का नियम है, सब यज्ञ सब नहीं कर सकते, हर एक का अपना विधान है यज्ञ का, और वो केवल ब्राह्मण जो जाति का है वही यज्ञ, जो जाति का मतलब जो एक जन्म में बड़ी तपस्या करके ब्राह्मण बना है उसी को यज्ञ करने का अधिकार है। तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते क्या, भगवान सबका नहीं है क्या। तब ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आपको जो मंत्र दिया है न इसके लिए कोई नेम है, न टेम है, न जो जाति है, न जो प्रांत है, ये जो भी जहां भी है वो जपेगा। जैसे दवाई का मालूम नहीं होता है लेकिन पेट में जाने से आदमी ठीक हो जाता है, ऐसे मैं आपको बताता हूं, जो इसको जपेगा उसका अंदर से सब सफाई हो जाएगी और बाहर से वो चमकने लग जाएगा, और ये भगवान को मिलाने वाला है और हृदय को साफ करने वाला है, ये अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है। वैसे भी कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दियो दान, मन पवित्र हरि नाम लिए, इस विद हो कल्याण। शरीर सेवा से पवित्र होता है, जितनी शरीर से सेवा होगी उतना शरीर पवित्र होगा, और धन जितना सेवा में लगेगा, परोपकार में लगेगा, भगवान की काम में लगेगा, वो धन पवित्र, धन पवित्र दियो दान। ये पहले महात्मा कहते थे, छत के ऊपर छोटा छोटा परनाला रखते थे पानी को गिरने के लिए बरसात में, क्यों, बरसात बहुत आती है, छत ही पूरी गिर जाएगी, छोटा सा परनाला रखने से पूरा मकान नहीं गिरता था, पानी बह जाता था, छोटा सा परनाला होता है। ऐसे जो कुछ भगवान ने आपको दिया है अपने कमाई से, छोटा सा परनाले से कुछ सेवा में लग जाएगा तो छत नीचे दबेगी नहीं, इसे दान को परनाला बोलते हैं, परनाला, जिसका मतलब जिससे नीचे दबने से बच जाता। सो मन पवित्र हरि नाम लिए, मन को पवित्र करने के लिए जो मुख्य यज्ञ है, ये यज्ञ सबको करना चाहिए, सरलता से कोई भी कर सकता है, अकेला बैठ के कर सकता है, लेकिन इसी यज्ञ के विश्वव्यापक रूप को पुनः कलयुग में कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि परिवार बैठ के साथ में अगर जहां नाम इसको उच्चारण करे तो उसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। और ये भागवत के आखिरी श्लोक में इस यज्ञ का निरूपण किया गया है, परिपुष्ट किया गया है और निर्धारित किया गया है, आदेश किया गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, सारे पापों को नाश करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो हमने कीर्तन से आज का यहाँ हमारे राकेश प्रिय, हमारे दयाराम के पुत्र के निवास स्थान पे, इसके माता और दो बहनों और लखी इनका भाई, उनके साथ मिलके आप सबको बुलाया है सत्संग में, और ये यज्ञ इनके घर में सुख शांति, परिवार में बहुत प्रेम के साथ भगवान का चिंतन, इनके मन में भक्ति जागृत हो, ऐसी कामना के साथ फिर एक बार चाहते हैं कि ये भक्त थोड़ा सा कीर्तन करें और आप इसमें भाग लीजिए 5-7 मिनट के लिए, पूर्ण आहुति इस यज्ञ में आप अपनी तरफ से डाल के अपने जीवन को धन्य कीजिए। हमारी तो हाथ जोड़ के आपको विनती है, जैसे सुबह उठ के 6-7 मिनट लगते हैं दांत साफ करने के लिए, मंजन करने को, और सब माँ छोटे बच्चे को भी उठा के कहती है जरा दांत साफ कर ले, इसमें से दुर्गंध आएगी नहीं तो, इतना ही टाइम 7 मिनट लगता है एक माला जपने में, और इससे आपके अंदर में जो बहुत सारा कचरा पड़ा है, जो आपको चिंता में डाल रहा है, वो सब नाश हो जाएगा अगर उठ के एक माला का भी रोज नियम बनाओगे। जैसे ब्रश करना रोज जरूरी है दांतों को साफ करने के लिए, ऐसे अंदर में से बहुत चित्त को चिंता से बचाने के लिए रोज भगवान के नाम का जप करने का, 7 मिनट कोई बड़ा टाइम नहीं है, ट्रैफिक जाम कहीं हो जाए तो 7 मिनट के बजाय 17 मिनट खड़ा होना पड़ता है, वहां टेंशन होती है, और ये टेंशन फ्री करने का साधन। और नहीं तो जहां ट्रैफिक जाम हो वहां बैठ के जप कर लिया करो, और कोई साधन नहीं है। अच्छा है कि भगवान का नाम ले लिया करो तो परेशानी कम होगी। एक भक्त को मैं जानता हूं दुबई में, उसने सारी भगवत गीता ट्रैफिक की लाल लाइट पे याद की। उसने बोला वैसे टेंशन करके बेकार काहे के लिया, उस लगा देता था सुनता था मुझे, उसने उस वक्त सुनाए थे तब 17 अध्याय थे, अब मेरे को मिला था यहाँ आ गया वापस, बोले सब अध्याय पूरे हो गए ट्रैफिक जाम, फिर लाल बत्ती पे खड़े और क्या करूंगा, तो कुछ लगा के सुन लेता था तो सदउपयोग कर लिया। वैसे टेंशन में हारून बजा के टाइम खराब करने, अच्छा है जब सब चलेंगे तब चलेंगे, और तो जा नहीं सकते, अच्छा है सदउपयोग कर ले। सदउपयोग कर किया जा सकता है ना, तो कम से कम ये महामंत्र का जप आपको आज ये यहां से प्रसाद लेके जाओ, और इसके उच्चारण करने से आप पहले कुछ करते हो उसकी कृपा से आपको ये मिल रहा है। आपके पास पहले है वो सोने की अंगूठी है, ये उसके ऊपर हीरा है, लगा के आप देख लो, अंगूठी भी चमकेगी और ये हीरा भगवान का नाम है जो भगवान से अलग नहीं है। अब मैं यहां से बोलूं पानी आ जा पानी आ जा पानी आ जा, नहीं आएगा। क्यों पानी नहीं आएगा? क्योंकि पानी जड़ है, वो थोड़ी जानता है मैं उसको बुला रहा हूं। लेकिन आप बैठे हैं, मैं बोलूं भाई लकी आ जा राकेश आ जा, तो आ जाओगे? नहीं। क्यों आओगे? क्योंकि आप चेतन हो, आप जड़ तो नहीं हो ना, टेबल नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, लेकिन आप आ जाओगे। तो हम सब चेतनों का जो आदि चेतन भगवान है उसका नाम लेंगे तो वो क्यों नहीं आएगा? भाई उसका नाम लेंगे तो वही आएगा, वो चेतन है इसलिए आएगा। और जड़ चीजें क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो जड़ है, उनको पता ही नहीं लगता है। तो भगवान को पता है कि मुझे बुला रहा है, तो भगवान आते हैं। हमको दिखे ना दिखे उसके लिए हमारी आंख को तैयार करना पड़ेगा, लेकिन बुलाने पे भगवान आते हैं। लेकिन बुलाने में हमारा भाव भगवान को बुलाने का होना चाहिए। और क्यों भगवान को बुलाएं? कि देखने से सुख मिलेगा, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन दुनिया में भगवान को लोग क्यों बुलाते हैं? कि हमारी सेवा करना। ये बस इसलिए आता नहीं है, भगवान डरता है कि ये सेवा में लगा देंगे। भगवान कहता है मैंने तुमको सब कुछ दिया है, अब तुम मेरी सेवा करो। बोला नहीं नहीं भगवान, भगवान आप मेरी सेवा करना, आ जाओ हमारा ये काम करके आना, मेरा ये काम करके आना। भगवान मंदिर में आजकल जाता हूं मिलता नहीं है। मैं पूछा पुजारी कहाँ गया? बोला इतने सारे लोग काम बताते हैं, अभी वहां गया है, ऑफिस गया है, आता होगा उसको पास कराने गया है, उसका टेंडर पास करा रहा है। भगवान को इतना सारा परेशान करते हैं, लेकिन भगवान सब जानता है कैसे करता है। एक बहुत बड़ा प्रिय भक्त मेरे, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट एक कथा कर ले, इतना टाइम है। एक भक्त था, भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। वो कहता भगवान आप रोज यहीं खड़े हो, जब आता हूं मंदिर में मुझे देख देख के लगता है आप थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, थोड़ा मैं ही खड़ा हो जाता हूँ, रोज खड़े हो, जब से आया हूं तब से खड़े हो। तो उसने कहा नाम गोपाल ही था, तो कहा गोपाल, कहता हे गोविंद आप थोड़ा घूमो, मुझे दुखी होता हूँ, रोज आता हूँ खड़े खड़े आप ऐसे हो। भगवान ने कहा ठीक है कल तुम सुबह आना, मैं तेरे को खड़ा कर दूंगा, जैसे खड़ा रहे ना, बोलना बिल्कुल मत, चुप रहना। अब इसको खड़ा कर दिया भगवान ने, भगवान तो बाहर घूमने चले गए। एक आदमी आया 3 पीस पहना हुआ, हाथ में बैग उठा के, और कहा हे भगवान हे गोपाल हे गोविंद, बड़ा आपने हमारा पहले का टेंडर पास कराया था, मैं बड़ा खुश हूं। ऐसे 500-500 के कुछ पेटी में डाला, और पर्स पड़ा था उधर ही रह गया, और कहा कि अभी एक और मेरे ऊपर कृपा करना, आज जा रहा हूं, टेंडर निकल जाएगा तो फिर आपकी सेवा करूंगा। और जाते जाते वो पर्स भूल गया, तो ये ऊपर से पहले कहा बुलाऊं, फिर बोला नहीं, भगवान ने कहा चुप रहना, चुप हो गया। अब वहां पड़ा है। एक दूसरा बेचारा बहुत गरीब साधु आया, कहा भगवान मैं तो आपका बहुत प्यारा भक्त, प्रेम करने वाला भक्त हूं, मैं चाहता हूं कुछ फल फूल, अच्छा आम आया है आप फूल ला के आपको भोग लगा दूं, मेरा विचार है कि फूल बहुत सुंदर बाजार से लाऊं, लेकिन धन नहीं, और कुछ और कार्य भी करने हैं आपकी सेवा के, कुछ साधुओं को खिलाऊं। अब ऐसे प्रार्थना करके देखता है तो आगे इतना पैसा पड़ा है ढेर। बोला वाह भगवान अभी आपने हमारा काम कर दिया, अभी प्रार्थना अभी माल, उठा के गया जाके फूल लाया आम लाया भगवान को चढ़ाने लगा। तब तक तीसरा आया और हाथ जोड़ के कहता है भगवान मैं तो जाता हूं जहाज पानी के में, बहुत महीना महीना घर से दूर, अभी मेरी आप रक्षा करना, मैं तो बहुत दूर जा रहा हूं पानी के जहाज में। तब पहला वाला पुलिस को लेके आया और कहा यही खड़ा है मंदिर में, और कोई नहीं है, मेरे पैसे यहीं रुक गए, और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये बोलना है ना, बट फिर चुप करना पड़ गया। अब ये पसीने में ऐसे भगवान आए हुए, क्या हुआ गोपाल? बोला तेरी टोपी ले, तेरी पगड़ी, ये कहां का परेशानी है? बोला हुआ क्या? बोला ठहरो फिर। बोला पहला आया, धान डाला, पैसा छोड़े और कहा कि टेंडर पास करो, वो गया तो दूसरा आया, वो पैसा उठा गया और तीसरा जेल में गया। ये क्या चल रहा है, अन्याय आपके सामने? भगवान ने कहा बेटा तू सुन गोपाल, पहला टेंडर पास कराने जा रहा था ना, ये पैसा ले जाता तो किसी को शराब कबाब दे के आया मेरे दर पे और फिर जाके पाप का काम करेगा, इससे मैंने उसके पैसे को अच्छे काम में लगा दिया, उसको उसका काम तो हो गया लेकिन पाप से बच गया। बोला चलो ये बात आपकी मान ली, वो पाप से बच गया, दूसरे का काम हो गया। बोला तीसरा जेल में क्यों गया? बोला जाके आज अखबार पढ़ो कि वो जहाज डूब गया है, वो गया होता उधर तो मर जाता, आया मेरे दर पे और मर जाता तो लोग कहते कि प्रार्थना के बाद मर जाता है, इसलिए उसको बचा लिया, वो बच गया, अभी वो उसके पैसे वहां होंगे, काम सबका हो गया। तो भगवान कैसे काम करते हैं ये हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो काम करते सबके, हमको थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि उसने जो किया ठीक था, लेकिन हम इतना सब्र नहीं कर सकते, इतनी हमसे प्रतीक्षा नहीं होती है। सो हमारी विनती है कि भगवान को रोज जपने का नियम बना के आप अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है?